अब देखिए कि आयात हमने देख ली और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने समझ भी ली, लेकिन जब तक हम इन आयात को अपने अमल के नाते से नहीं देखते तो बात नहीं बनती। तो ज़रूरत महसूस होती है कि हम इन खसूसियात जिनका तذکرہ आखिरी आयात में, इस पे थोड़ी सी बात करें और साथ साथ अपना जायज़ा भी लें कि क्या वाकई हम इन सारी चीज़ों पे अमल कर रहे हैं जिनका तذکرہ इन आयात में है। मैं हल्का सा आयत को साथ साथ दोहराते हुए आपको इंशाअल्लाह ताला मौका दूंगी कि आप भी गौर करें। अल्लाह सुबहाना ताला ने पहले तो हमें दावत दी कि तुम जन्नत की तरफ भागो, मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नत अर्धुहस समावातु वल अर्द। भागने से मुराद भाग दौड़ है। इससे हर इंसान अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ देख सकता है, क्योंकि जब हम किसी भी आयत को बहुत ज़्यादा इस तरह देखते हैं, ये फ़लाँ मौके पर नाजिल हुई, शान नज़ूल ये है और मक्का वालों की बातें, तो हम अपने आप को रुख्सतें देते हैं। हालांकि कुरान पाक के पढ़ने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो हिदायत है। अल्लाह ताला ने सूरत बकरा के पहले ही सफ़े पे कह दिया कि हुदल लिल मुत्तकीन। तो अगर हम किताब से सब कुछ ले लें लेकिन हिदायत ना लें, और हिदायत से मुराद रहनुमाई है, गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस, तो इसका मतलब ये कि हमने इसका वो पूरा हक अदा नहीं किया कि जो करना चाहिए था। तो हम सब अपने आप को देखें, इन आयात को अब दोबारा सोचते हुए सिर्फ़ और सिर्फ हमें अपने आप को देखना है। होता क्या है कि जब कुरान पाक की कोई भी बात ऐसी आती है जिसमें अमल की थोड़ी बातें होती हैं, तो हम सामने किसी और को रख लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, साथियों को, और उसके बाद फिर हमारे मिजाज में तनकीद पैदा हो जाती है, और उस तनकीद के नतीजे में हम हर वक्त लोगों को टोकते रहते हैं। नतीजा क्या होता है कि लोग फिर हमारे दीन से बेजार होने लगते हैं। हालांकि मसनून अमल यह है कि जब भी कोई बात पढ़ी जाए, समझी जाए, तो उस वक़्त हम उसको अपने लिए देखें, मेरी भाग दौड़ किस तरफ है। अल्लाह ने तो कहा कि सारी विला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, दो चीज़ों की तरफ भागने का हुक्म है। एक क्या है? बख्शिश की तरफ। क्या मतलब इस बात का? कि इंसान से जो गुनाह हो जाते हैं उसकी माफ़ी की कोशिश। मुझे ऐसे लगता है कि एक खातून खाना है और वो बहुत ज़्यादा सफाई पसंद है, इधर हाथ से कोई चीज़ गिरी, टेबल पे धब्बा पड़ा और वो कपड़ा लेके साफ़ करने के लिए निकल आई। बिल्कुल मुझे इस लफ्ज़ सारी विला मग़फ़िरतन से यही फीलिंग्स आ रही हैं, भागो मग़फ़रत की तरफ। हम इंसान हैं ना, दुनिया में रहते हुए हमसे बहुत सारे गलत काम हो सकते हैं, गुनाह भी होंगे, ख़राबियाँ भी हमारे अंदर होंगी, लेकिन जो बंदा अपने आप को साथ साथ पाक करता जाएगा, अल्लाह ताला उसको पाक करेगा। हम में से कोई ऐसा है कि जो ये कहे कि मेरा घर कभी गंदा नहीं हुआ? तो इसका मतलब कि वहाँ तो कोई रहता ही नहीं। घर गंदा होगा, लेकिन साफ़ किसका रहता है? जो साथ साथ साफ़ करता है। इसी तरह जब दुनिया की शाहराह में हम लोग चलते हैं तो हमारे ऊपर गुनाहों की धूल भी पड़ती है, मिट्टी भी पड़ती है, ख्वाहिशात का भी गलबा होगा, लेकिन जो बंदा अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता रहता है, अल्लाह ताला उसको पाक करता रहता है। फिर दूसरी चीज़ है जन्नत। क्या मेरे दिल में जन्नत की तलब पैदा हो चुकी? क्या मुझे जन्नत की कीमत मालूम हो गई? देखिए, दुनिया में किसी चीज़ की वैल्यू का पता चल जाना, उसके लिए काम करना हमारे लिए आसान कर देता है। जिस चीज़ की हमें वैल्यू नहीं मालूम होती ना, तो वो हमें को मुफ्त में भी दे तो कहते हैं नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं कि वो चीज़ क्या है। तो क्या मुझे जन्नत की वैल्यू मालूम हो गई है? जन्नत की कीमत, उसकी कदरों कीमत मेरी नज़रों के सामने है? अगर होगी तो कैसे पता चलेगा कि है? हमारे रवैयों से और हमारे अमल से, और उस जन्नत को पाने के लिए की जाने वाली कुर्बानियों से। क्योंकि जब किसी चीज़ की कीमत मालूम होती है ना, तो इंसान उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। बड़ी बड़ी रकमें खर्च करके जब हम अपने घरों में कोई चीज़ लाते हैं तो असल में हम कुर्बानी दे रहे होते हैं। दूसरा कहे कि क्या ज़रूरत इतनी महंगी चीज़ की, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे इसकी कदर मालूम है, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो लिहाजा जन्नत की कीमत क्या मुझे मालूम है, और क्या हकीकत में मैं जन्नत को पाना चाहती हूँ? फिर इसके बाद अगली चीज़ को अगर हम देखेंगे, वो इद्दत लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए तैयार की गई। ये अल्लाह सुबहाना ताला का फ़ैसला है। अल्लाह ताला खबर दे रहे हैं कि देखो, वो हर एक के लिए नहीं है। अगर तुम में से कोई भी इस जन्नत की तलब रखता है तो फिर उसको अपने अंदर तकवा लाना पड़ेगा। और तकवा की अमूमी सी तारीफ कई बार दोहराई जा चुकी कि हिफ्ज़ुन नफ्सिन अम्मा योसिम, अपने नफ्स को हर उस चीज़ से बचाना, हिफाजत करना नफ्स की हर उस चीज़ से जो उसको गुनाहगार कर दे। आंखों का तकवा क्या कि आंखों को हर उस चीज़ से रोका जाए जो आंखों को गुनाहगार कर दे। इसी तरह कानों, हाथों, जुबान और जिस्म के एक एक उज्व का तकवा है। क्या वाकई मेरे अंदर तकवा के ये दर्जे पैदा हो गए? क्या मुझे अपने गुनाहों पे खुद ही मलामत होने लगी? इसका इंसान खुद जायज़ा ले सकता है और जितना लेगा इंशाअल्लाह ताला उतना ही अल्लाह ताला उसके लिए रहमत करेगा। फिर आयत 134 में अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की मजीद सिफात को खोल के रखा, अल्लज़ीन युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई, खुशी और गम में वो खर्च करते हैं। क्या मैं हर मौके पे खर्च करती हूँ? देखिए कि खर्च करने की बात पीछे भी हो चुकी कि सिर्फ माल का खर्च नहीं होता, इज्जत का खर्च भी है, वक्त का खर्च भी है, स्किल्स का खर्च भी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि एक ईमान वाला सरासर मेरा बन जाए, उसकी ज़िंदगी मेरे हुक्मों के गिर्द घूमे। तो जब आम हालात होते हैं ना हमारी ज़िंदगी के, हम बहुत अच्छे रहते हैं। गोया कि दिन में 5 वक्त की जो नमाज है ना, ये भी असल में खर्च है हमारे उस वक्त का जो हम अल्लाह के लिए करते हैं। पूछिए, खुशी के आलम में, खुशी से मुराद ले ले नॉर्मल लाइफ, रूटीन लाइफ में जो नमाज़ मैं पढ़ती हूँ, क्या जब मेरे ऊपर कोई मुश्किल हालात आते हैं तो उस वक़्त मेरी नमाज़ छूट तो नहीं जाती? ये ऐसे ही है कि जैसे फिर सर्राई तो आपने अपना वक्त लगा दिया लेकिन दर्रा की सूरत में नहीं आए। और दर्रा का लफ्ज़ दरर, तकलीफ़, मुसीबत, इन सारी चीज़ों के साथ होता है। अफलास में भी आती है इसकी बात, तंगदस्ती भी होती है, बीमारियाँ भी आती हैं कि जब मैं किसी भी एबनॉर्मेलिटी का शिकार होती हूँ, जब मेरी ज़िंदगी में कोई अनयूजल बात हो जाती है, तो क्या मेरी नमाज़ तो नहीं जाती, मेरा कुरान तो नहीं चला जाता? आप देखिए कि बाज़ दफ़ा जब घरों में खुशी के मौके आते हैं तो हमारी नमाज़ें क्या इबादत, कई कई दिन तक हमें होश ही नहीं होती कि हम अल्लाह के बंदे भी हैं कि नहीं हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि एक इंसान अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखे कि उसने हर हाल में अल्लाह का बंदा बनना है। इसको ज़रा अपनी ज़िंदगी में समझें। आपकी कोई दोस्त, कोई साथी खुशी में तो आपके घर भाग भाग के आए, दावत है तो वो आ रही हैं, शादी है तो वो आ रही हैं, लेन देन हो रहा है तो वो आ रही हैं। और अगर ऐसा मामला हो कि कोई गम है, आपको उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, आपको उसकी ज़रूरत थी, कोई बीमारी है आपके घर में, आप कहते हैं थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो, कहते हैं नहीं इस वक्त तो नहीं आ सकती, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपने कहा कुछ पैसे हैं मैं आपको वापस कर दूंगी, लौटा दूंगी, इसकी उनको ज़रूरत नहीं इस चीज़ को, तो वो नहीं ले पाती, हाँ आपको कैसी लगेंगी? और कुछ नहीं, सिर्फ आपको ही पता चल जाए ना कि फलां दोस्त जो है ना, वो सिर्फ आपको अपनी मुश्किल में बुलाती हैं, बस जब मुश्किल होती है आपको कहती हैं आना ज़रा हेल्प कर देना, आओ ज़रा खाना पका लो, साथ ये कर दो, लेकिन जब घर में कोई बड़ा ख़ास फंक्शन होता है, ख़ास तौर पर बड़े लोगों का, तो आपको भूल जाती हैं। क्या औकात रहेगी उस दोस्त की हमारी नज़रों में? बस इससे और इसी तरह की दूसरी मिसालों से हम सोच लें कि अल्लाह की निगाहों में हमारा क्या मोल रह जाता है जब हम खुशियों में उसको भूल जाते हैं। जब हमें खुशी मिलती है ना, तो असल में वो इम्तिहान होता है कि क्या इसके बाद भी तुम्हें कोई और खुशी मुझसे चाहिए। बाज़ लोग खुशियों के मौके पे ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं कि जैसे आज के बाद अब उनको अल्लाह ताला से कोई और ज़रूरत ही नहीं, कोई और ख्वाहिश ही नहीं, कोई और उनको मांगने की चीज़ नहीं। तो इसलिए एक इंसान इस चीज़ की तमन्ना करे, इस चीज़ की ख्वाहिश रखे कि मैंने अपने रब को हर हाल में रखना है। बस इस वक्त देखिए कि आप लोग क्लास ले रहे हैं ना, ये आपका सदका है, आपके वक्त का सदका है, मेरा भी सदका है, अल्लाह ताला कबूल कर ले हमारी ये छोटी सी कोशिशों को, लेकिन ये हमारा सदका है। और आपको पता है कि कुरान पाक का पढ़ना एक लंबा काम होता है, ये तो नहीं है कि आप किसी को दिन रात लगा के कोई 2-3 हफ्ते में करा दें, हो सकते हैं इंटेंसिव कोर्स, लेकिन समंदर में तो डूबने को दिल चाहता है ना जब आप इन आयात में जाते हैं। अब क्या ये हो सकता है कि इस पूरे अरसे में जो हमने इस कोर्स के लिए लिया, हम कभी बीमार ना हो? पॉसिबल है, अल्लाह कर दे तो पॉसिबल है, लेकिन अमूमन कुछ ना कुछ ऊपर नीचे इंसान का मामला हो जाता है। दूसरी सूरत क्या है कि क्या ये हो सकता है कि इस पूरे अरसे के दौरान हमारे घर वालों में या हमारे ख़ानदान में कोई शादी ना आए, कोई दावत ना आए, कोई बच्चा बीमार ना हो, कोई माली परेशानी ना आए, कोई पाकिस्तान से फ़ोन आ जाए कि जिससे जहन परेशान हो जाता, ये सब कुछ होगा? यही इम्तिहान है बस। ये जो इम्तिहान का वक्त होता है ना, कि जिस वक्त हमने ये साबित करना होता है कि अल्लाह हम जैसे आम हालात में तेरे थे तो अब नामवाफिक हालात में भी तेरे हैं, उस वक्त अगर हम फिसल जाते हैं ना तो हमारी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे वक्तों में जब जमते हैं ना फिर ईमान जो है ना वो दिल में जमता है। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि ईमान के बड़े आला दर्जों पे दिखते हैं, वो बात करते हैं ना तो उनकी बात से महसूस हो रहा होता है कि माशाल्लाह इनके दिल में ईमान है। और हम अपने दिल का हाल लेना तो हर वक्त बस खोखली खोखली बातें, हंसी मजाक, खेल कूद, फर्क किस बात का है। एक जुमला लिख लें शायद कहीं काम आएगा कि जो बंदा दर्रा यानी जिंदगी की उलझनों और मुशक्कतों और नामवाफिक हालात में अल्लाह की तरफ कायम रहता है, अल्लाह के दीन की तरफ, यानी जो कर रहा था वही कर रहा है बल्कि और रुजू कर लेता है, तो समझ ले कि अल्लाह उसके दिल को ईमान के लिए चुन लेता है। ईमान का पौधा जो है ना ये मुश्किलात के दौर में अपने आप को दीन पर जमाने से लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे वक्त में फिसल जाते हैं, इतना पानी बहा देते हैं कि वो बीज भी जो थोड़ा बहुत ईमान का था वो भी नीचे चला जाता है। इसलिए कभी ये ना ख्वाहिश करें कि कोई मुश्किल आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई बीमारी आए, कोई घर वालों का प्रेशर आए, लेकिन अगर आ जाए तो चुपके से मुस्कुरा दें, अल्लाह ये वो वक्त है जो मेरे चुनाव का है, बस तू मुझे साबित कदम रखना। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और गुस्से पे काबू पाने वाले। गुस्सा आता है, ये नहीं कहा कि गुस्सा नहीं उनको आएगा, काबू पाना है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे किसी बहुत शरारती बच्चे को आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं और वो मचल ही रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, रो रहा है, धो रहा है, और नतीजा क्या होता है कि वो आपके हाथों से निकलता जाता है। इसी तरह हर इंसान के अंदर नफ्स की सूरत में भी एक बच्चा बैठा हुआ है जो हर वक्त मचलता है। उसका भी दिल चाहता है कैंडीज खाते रहो, चॉकलेट्स खाते रहो, कोक पीते रहो और हर वक्त गेम्स और खेल और कूद में रहो। और ज़िंदगी के मामलात में हम तन्हा नहीं हैं। हम में से कोई किसी को कहे कि मेरी साथ कोई मसला ना हो, फलां शख्स ये मुझे बहुत गु़स्सा दिलाता है, फलां की आदत पे मुझे बहुत गु़स्सा आता है, बस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अकेले रहना है, फिर तन्हाई पे गुस्सा आएगा, फिर अकेले रहने पे गुस्सा आएगा, फिर इस पे गुस्सा आएगा कि क्यों अकेली हूँ, चलो साथ ही कोई लड़ता था तो ज़िंदगी तो गुजर ही रही थी ना। बात क्या निकली कि हर मौके पे ज़िंदगी के मैदान में गुस्सा आएगा भी, लोग गुस्सा दिलाएंगे भी। और गुस्से का आना कोई ऐब नहीं है, हमारे यहाँ इसको ऐब कर दिया। और किसी शख्स की तारीफ़ करते हैं ना, कहते हैं फलां माशाल्लाह उसको तो कभी गुस्सा आया ही नहीं, ये ऐब है। देखिए अल्लाह ताला ने गुस्से का मादा हमारे अंदर रखा, खिलाफे शरीयत चीज़ों को देकर गुस्सा आना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को जब गुस्सा आता था लोगों को गलत काम करते देखकर, तो ये उनका ऐब नहीं था, ये सरासर उनकी खूबी थी। आज एक बाप अपनी बच्ची को गलत कपड़े पहने देखे उसको गुस्सा नहीं आता तो ये बाप का ऐब है। आज एक भाई बहन को किसी गलत हरकत में मुलव्वस देखे और वो कहे नो प्रॉब्लम, आई एम सो नाइस, आई एम वेरी काइंड, मैं बड़ा नरम दिल भाई हूँ, ये उसका ऐब है। और मर्द की तो मर्दानगी नहीं है जब तक उसको गुस्सा ना आए। और बीवी को शौहर की गलत चीज़, शौहर को बीवी की, भाई बहन, इंसान, रिश्तेदार, लोगों को गलत काम करते देकर गुस्सा ना आना ये ऐब है। अल्लाह ने ये क्यों रखा था? ताकि इससे शरीयत के तकाजे निभाए जाएं। जैसे किसी ने कहा कि गुस्सा ऐसे है जैसे कोई जानवर, शिकारी जानवर होता है ना, आप उसको टेम कर लेते हैं यानी सुधा लेते हैं ना तो वो आपकी बात मानता है, आपके फ़ायदे का बन जाता है, और अगर आप उसको सुधाते नहीं है ना तो वो आपकी भी जान ले लेता है कभी कभी। इसी तरह करना क्या है कि अपने गुस्से को चैनलाइज करना है। जब हम अपने गुस्से को सुधा लेते हैं ना तो उसको सही रुख पे इस्तेमाल करते हैं। मसलन बाज़ लोग हैं गुस्से में खूब काम करते हैं, गुस्सा आता है ना घर साफ़ कर देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बाज़ लोग गुस्से में खूब सदका खैरात करते हैं, अच्छी बात है। और बाज़ गुस्से में डिप्रेशन में चले गए या दूसरों को कुछ बुरा भला कहने लगे या मुंह से बोलने लगे, ये दुरुस्त नहीं है। हमारे अमूमन गुस्से को भी ग्लैमराइज कर दिया जाता है। कुछ वजूहात होती हैं, एक तो यहाँ हल्का सा इशारा कर दूं कि इसके ऊपर एक पूरी हमारी वर्कशॉप है अल्हम्दुलिल्लाह एंगर मैनेजमेंट के नाम पे, आप जो भी इसको डिटेल से सुनना चाहें वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। उसमें हमने बहुत डिफरेंट एंगल से देखा था कि गुस्से वाले बच्चों के साथ कैसे मामला किया जाए, गुस्से वाले शौहर के साथ और बाकी सबको। लेकिन इस वक्त इस आयत के नाते से सिर्फ इतना जहन में रख लें कि गुस्से को दबाना है। हमारे यहाँ गुस्से को भी बाज़ दफ़ा लोग इसलिए गुस्सा करते हैं जी, हम तो बड़े ख़ानदानी लोग हैं और हम तो मुग़लों की औलाद हैं और हमें तो हर वक्त गुस्सा आता है। यानी एक वजाहत, एक रौनत, बाज़ चौधराहट में रहते हैं, बाज़ अपने आप को किसी के सर पे मुसल्लत करने के लिए गुस्सा करते हैं। बाज़ लोग हैं वो अपनी ज़हानत की अलामत समझते हैं गुस्से को, कि सब बेवकूफ़ हैं, हमें तो लोग अच्छे ही नहीं लगते, इनको तो बिल्कुल अक्ल नहीं और समझ नहीं और बस ये और दिस एंड दैट। इसी तरह एक तीसरी वजह भी बाज़ लोगों ने बनाई हुई है और वो क्या कि हम मसरूफ़ बड़े हैं। चूँकि हम मसरूफ़ बड़े हैं इसलिए हमें हर बद वक्त दूसरों पर गुस्सा ही आ रहा है। ये मेरे पढ़ने का टाइम था, ये मेरे सोने का टाइम था, ये मेरे खाने का टाइम था, और हर वक्त गुस्सा गुस्सा गुस्सा। आप देखें वो मर्द जो बहुत कारोबार करते हैं तो वो अक्सर अपने बच्चों को डांटते ही होते हैं, घर आते नहीं और जब आते हैं तो डांट रहे होते हैं कि तुम्हें पता नहीं मैं थका हुआ आया और तुम ऐसे हो। इस तरह वो ख़वातीन जो अपने ऊपर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डालती हैं, घर के तकाजे तो थे ही, साथ उन्होंने बाहर के कोई जॉब के कोई और जिम्मेदारी के ले लिए, तो वो जब घर में आती हैं तो सारा गुस्सा फिर बच्चों और शौहर पे निकलता है कि इस घर में तो मुझे सुकून मिलता ही नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि बाज़ दफ़ा बच्चों पर गुस्सा आता है लोगों को, सारी दुनिया के साथ वो मीठे बोलेंगे, बच्चों के साथ उनको गुस्सा आएगा। ठीक है, जो तंग करता है उस पर गुस्सा आता है, इसमें कोई शक नहीं है, अपने बच्चे पे गुस्सा आता है, दूसरे पे तो आता भी नहीं। किसी पे गुस्से का आना ही ये बताता है कि आपको उसकी केयर है, वरना एक बंदा सोया तो सोया रहे, हमें क्या, हमारी बला से कोई नहीं खा रहा तो ना खाए, क्योंकि अमूमन माओं को बच्चों पे गुस्से ही नहीं बातों पे आ रहे होते हैं, खा क्यों नहीं रहे, सो क्यों नहीं रहे, स्कूल क्यों नहीं जा रहे। लेकिन आप देखिए कि गुस्से को मैनेज करना है इस तरीके से कि किसी के लिए वो बुरी यादगारें ना बन जाए। आपको होता है कि बाज़ दफ़ा बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें कह दी जाती हैं या दूसरों का हमारे साथ रवैया आता है कि जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी उसके असरात नहीं निकलते, गुर्राने वाला अंदाज़ है, बाज़ माएँ चीखती हैं तो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तो वो जितनी भी माँ की रिस्पेक्ट करना चाहें लेकिन वो माँ का जाहिल किस्म का अंदाज़ उनको नहीं भूलता। फिर इसी तरह एक और गुस्सा हमारे यहाँ है और वो क्या, तालीम का गुस्सा। एक बड़ा ही मारूफ जुमला है जो इंतहाई गैर महज़ब है कि कुरान डंडे के बगैर नहीं आता, मौलवी साहब का डंडा और फलां की बातें, और सिखाना है तो खूब मारना पड़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी स्टिक्स रखी होती हैं और जिससे बच्चों को मारा जाता है। यानी स्कूलों में जाएं तो उनको प्यार से हाय बाय हनी करके लोग पुकारें, और आप जाएं बच्चों को स्कूल मास्टर साहब से या मौलवी साहब से पढ़ने पढ़ाने, मस्जिद में जाएं तो वो साथ डंडा रखें, क्या बच्चे को तासुर दिया। एक खातून थी तो उनको किसी ने कहा कि आप कुरान क्यों नहीं पढ़ती, यानी अच्छी खातून थी और कुरान की तरफ नहीं आती थी पढ़ने के लिए जैसे, तो कहने लगी कि मैं क्या करूं, मैं जूं ही कुरान खोलती हूं मुझे बचपन में अपनी उस्तानी जी की डांट याद आ जाती है और उनका चीखना और चिंघाड़ना याद आता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कुरान बड़ी सख्त चीज़ है, कंट्रोल करना है इन चीज़ों के अंदर नहीं पढ़ना। फिर बाज़ दफ़ा आप देखिए कि गुस्से को ग्लैमराइज कर दिया जाता है, फिल्मों में दिखाते हैं हीरोइन बड़े गुस्से में है, हीरो साहब पीछे फिर रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं और उसको बुला रहे हैं और कर रहे हैं। अब आप देखते हैं अच्छा फिल्म में वो तो इतनी अच्छी लग रही थी, आप कहते हैं आज मैं भी गुस्सा दिखाती हूँ, आने दो मियाँ को, अब आने पे अपने मुंह फुला लिया, आपका ख्याल था मियाँ साहब वहीं बाहर से कोई गुलदस्ते में से फूल तोड़ के ले आएंगे और पेश करेंगे, वो आगे से डांटने लग गए कि सुबह से थका हुआ आए और बाके तुम्हारा गुस्सा देखूँ, बैठो। अब रोने लगे कि देखा ये तो बदल गए, पहले तो अच्छे थे अब तो बुरे हो गए, और कुछ नहीं इन पे तो जादू हो गया, और ये आज माँ के घर की तरफ से गुजर के आए थे तो कुछ फूक पड़ गई होगी। यानी इतना ज़्यादा हमने इस गुस्से को अपने ऊपर कर लिया है, और बाज़ दफ़ा आप देखिए सिर्फ एक शख्स गुस्से वाला होता है पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। जो लोग गुस्से का बुरा इजहार करते हैं ना वो कभी लोगों की दुआएं नहीं लेते। अगर आप चाहते हैं ना कि आप लोगों की दुआएं लें तो आपको अपने गुस्से पे काबू पाना है, वल काज़िमीन अलगैस, और दुआ करें कि अल्लाह हमारे ईमान में वो हरारत पैदा करे कि खिलाफ शरीयत कामों पे हमें गुस्सा आए, फिर वो गर्मी हमारे अंदर उठे और हम अमर बिल मारूफ की कोशिशें करें और अपने घर वालों की ख़ानदानों की इस्लाह का बेड़ा उठाएं और फिर उसके अंदर हम सब्र करें। यही है वतवासो बिल हक की वतवासो बिल सब्र। यही बात एक और जगह भी आती कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और वस्तबिर अलैहा, और इस पे सब्र भी करो, जमे भी रहो, खुद भी करो। तो बहरहाल ये एक बहुत मल्टी एंगल्ड किस्सा है जिसके ऊपर इंसान को तवज्जो करने की ज़रूरत है। फिर अगली चीज़ देखिए, आफीन अनिन्नास, लोगों से दरगुजर करना। गुस्से में तो थोड़ा बहुत इजहार हो जाता है ना, लेकिन आफीन अनिन्नास में तो क्या है कि एहसास ही ना होने दो कि तुमने कोई गलत काम किया है, कोई बुरी बात की है। अब देखिए कि तरतीब में पहले सबसे खर्च की बात हुई ना, क्योंकि पिछली आयतों में सूद का जिक्र था, और सूद खोर जाए वो माल की मोहब्बत में चूर होता है, सूद में दूसरों का माल नाहक तरीके से खाया जाता है। यहाँ सदक़े का जिक्र कर दिया क्योंकि इसमें बंदा अपना माल बग़ैर किसी हक के भी दूसरे को दे देता है। अब दूसरी सिफत जो है वो गुस्से की आ गई, और जैसा कि आपको बताया था कि गजब मतलब जैसे भरी हुई बॉटल है पानी की, उसके मुंह को बांधने वाली कैफियत इसमें आ जाती है। इसके बाद आप देखिए कि फिर जब गुस्से पे काबू नहीं पाया जा रहा, तो उस पे काबू पाने के बाद साथ ही कह दिया आफीन आने नास। आफीन का लफ्ज़ ये अफवन से है, आइन फा वो। बाज़ अरब लोग बहुत अच्छा लगता है जब वो कोई काम कहना चाहे ना, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना लोग एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा, माजरत खां, तो वो कहते हैं अफवन, पार्डन, पार्डन भी बोलते हैं, यानी माफ़ कर दीजिए, अफवन दरगुजर कीजिए। तो क्या पता चला कि अफवन की कैफियत क्या होती है, बावजूद कुदरत के इंसान किसी की खता और ज़र्र रिसानी पर सिर्फ खामोश ही ना रहे बल्कि दिल से उसे मुआफ़ भी कर दे। और ये चीज़ कज़मुल गैस से आला है, यानी गुस्से के इजहार से भी आला चीज़ क्या है कि इंसान दूसरे को एहसास ही ना होने दे, यानी दाग भी मिटा दे, धब्बा भी मिट जाए कि मुझे तुम पे कोई गुस्सा आया था और तकलीफ़ तुमने मुझे दी थी। और ये सारी सिफात असल में देखिए गज़वे उहद के ज़िमन में आ रही हैं। अल्लाह के दीन के काम करने वालों के दिलों में अगर इस किस्म के जज्बात नहीं हैं तो वो अल्लाह के काम के नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत जगह लोगों की बातों पे गुस्सा आएगा, सब्र करना पड़ेगा, लोग दुखाएंगे, दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे, उनको मुआफ़ करना पड़ेगा, और मुआफ़ी से भी बढ़ के वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आखिरी सिफत इस आयत की क्या है, मुहसिनीन, हुसन से एहसान। ये मर्तबा पिछले तमाम मर्तबों से बुलंदतर है। इंसान दुश्मन से इंतकाम भी ना ले, इसे दिल से भी माफ़ कर दे, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस पर लुत्फ़ व एहसान का मामला भी कर दे। अल्लाह ताला ने यही बता दिया कि मुझे ऐसे लोग पसंद हैं। अब आप ज़रा वल्लाहु युहिब्बु के लफ्ज़ पे रुक के सोचें, बनना चाहते हैं अल्लाह के पसंदीदा? कोई है जो कह के नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं जाएगा। तो फिर पिछले सारे कामों पे नहीं रुकना बल्कि मोहसिनीन के दर्जे पे आके रुकना है, फिर अल्लाह आपको पसंद करेगा, फिर अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करेगा। क्योंकि जब तक हम लोगों के साथ इस तरीके का मामला ना करें तब तक हमें बात नहीं पूरी समझ आती। इसके ऊपर एक वाक्य भी आता है कनीस का, अली बिन हुसैन थे, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो के पोते लगा लें। यहाँ बाज़ लोग मुगालता करते हैं कि अच्छा अली बिन हुसैन थे तो ये कैसे हुए, हालांकि हसन बिन अली थे। तो बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी या शायद पता भी हो, बहरहाल कि हज़रत अली के बेटे हसन थे, तो हसन के बेटे जो थे उनका फिर नाम अली था, और अरबों में ये आम दस्तूर था कि अपने दादा के नाम को फिर पोते में रिवाइज़ कर देते थे। तो इनकी एक लौंडी थी, एक वक्त क्या हुआ कि वो इनको वुज़ू करा रही थी तो उसके हाथ से पानी का बर्तन छूटा, इनके ऊपर गिर गया, कपड़े भी भीग गए। अब जाहिर बात है कैसे वक्त में गुस्सा तो आएगा। अब कनीज़ को लगा कि इनको मेरे पर गुस्सा आएगा, तो बहुत समझदार थी, उसने फौरन आयत का हिस्सा पढ़ा कि वल काज़िमीन अलगैस, के गुस्से पे काबू पाने वाले। ये बात सुनते ही वो शख्स, यानी अल्लाह के नबी के आखिर ख़ानदान से ही थे, अपने गुस्से को पी गए, खामोश हो गए। अब कनीज़ ने जब मौका देखा तो इसने आयत का अगला हिस्सा पढ़ा, वला आफ़ीन आनिन नास, के लोगों से दरगुजर भी करते हैं। ये बात सुन के कहने लगे, जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया, यानी मेरे दिल में भी अब इस पे गुस्सा नहीं रहा। तो कहने लगी कि अच्छा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तो मुहसिनीन को पसंद करता है। तो कहने लगे, जा फिर मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। यानी सिर्फ़ एक आयत एक लौंडी की आज़ादी का सबब बन गई। हम लोगों को माफ़ कर देते हैं लेकिन दिल से असर नहीं जाने देते। हम कहते हैं क्या वैसे मैंने तुम्हें उस वक्त माफ़ कर दिया था लेकिन वो बात मुझे भूली नहीं है। और हमारी माफ़ियाँ कुछ इसी किस्म की हैं, बस मैंने उसको अल्लाह के लिए माफ़ किया हुआ लेकिन दिल मेरा बड़ा जलता है, और थी वो ऐसी, और फिर पूरी कहानी सुना देते हैं। 5 साल बाद भी बहनें बैठेंगी ना तो पिछली सारी कहानियाँ दोहराएंगी, उसने ये किया वो किया, वैसे मैंने उसको माफ़ कर दिया। अब अल्लाह ही पूछेगा, नहीं आप ही पूछ लें तो बेहतर है। आप देखिए कि बाज़ लोग सफाई पसंद होते हैं ना, वही मिसाल देती हूँ, ये वाइट चादर लगी हुई ना, इसके ऊपर अगर इंक गिर जाती है, बिलफर्ज इस टेबल पर मेरे से इंक गिरती है, मैं आप में से 3 लोगों को कहूँ कि आए इसको साफ़ करें, मुझे यकीन है कि 3 मुख्तलिफ किस्म से साफ़ करेंगे, कुछ तो और ही फैला देंगे। वो पहले एक कतरा थी ना, वो फैल के वो काफ़ी ज़्यादा जगह चली जाएगी। कोई और ऐसा होगा जो उसको साफ़ करेगा लेकिन थोड़ा सा एहसास होगा कि यहाँ कुछ था, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे कि ऐसे वाइप आउट करेंगे कि ये बिल्कुल नए का नया है। ये नया का नया करना जो है ये वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन है। पहला दर्जा कहता माफ़ किया, बाज़ तो उसको फैलाते हैं खूब गंदम में, मशहूर कर देते हैं, बाज़ जो है उसके ऊपर और गंदा कपड़ा डालते हैं। आप कभी साफ़ जगह को साफ़ करते हुए गंदा कपड़ा इस्तेमाल करें तो क्या होता है, और ज़्यादा गंदा हो जाता है। सफ़ेद कपड़े को आप डर्टी कपड़े से साफ़ करें अपने काउंटर्स को या किसी भी चीज़ को, और गंदा होता है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि बाज़ दफ़ा लोगों के रवैये हम पे इतना असरअंदाज नहीं होते, लेकिन हमारे गंदा दिल और हमारी गंदी कोशिशें उसको और ज़्यादा डर्टी कर देती हैं। तो किस दर्जे पे अपने आप को लेके जाना है, आज हमें एक चेकलिस्ट मिल रही है कि हमने मोहसिनीन के दर्जे पे जाना है। और कितने ही मोहसिन हैं जिनको खुद नहीं पता कि मोहसिन होता कौन है। अब ये वो सिफात हैं जिनका ताल्लुक जो है वो इंसानी मामलात के साथ था। तकवा के दो दर्जे होते हैं, एक अल्लाह के साथ ताल्लुकात में दिखता है और एक लोगों के साथ ताल्लुकात में दिखता है। तो अब अल्लाह सुबहाना ताला लोगों के साथ ताल्लुक के बाद अब अपने ताल्लुक की बात करते हैं, और अल्लाह की शान देखिए कि हकूकुल इबाद की बात ज़्यादा पहले कर दी और हकूकुल्लाह की बात अब बाद में हो रही है। मज़ीद सिफत क्या है, वल्लज़ीन इज़ा फ़ालू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह। वो लोग जो कभी कर बैठे, लफ्ज़ फालू बड़ा काबिल गौर है, इधर इधर होना चाहिए था आमिलू, अमल करना, उर्दू में भी हम बोलते हैं, अमिलू नहीं बोला, फालू बोला। फालू लफ्ज़ बता रहा है कि ये गुनाह किया नहीं, हो गया है, इरादतन नहीं किया, ख़ता हो गई, जिसको अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं ना कर बैठे हैं, अब अल्लाह अब ये गुनाह हो गया, अब क्या करूं, अब कैसे करूं। यानी जब इनसे कोई गुनाह राह चलते हो जाता है, ना इनकी प्लानिंग होती है ना इनका इरादा होता है, लेकिन जब हो जाता है तो फौरन बख्शिश तलब करते हैं कि अल्लाह मैंने क्या किया। क्या हो जाता है, फ़ाहिशा। फ़ाहिशा का जो लफ्ज़ है ना, फुखश से है, वो गुनाह जिसका ज़रर दूसरों तक पहुँचे। और आगे ज़लमों का लफ्ज़ है, ज़लमों से मुराद वो गुनाह होते हैं जिसका असर इंसान की अपनी ज़ात तक महदूद हो। यानी हर जुल्म जो है वो जालिम ही के लिए क़यामत के दिन अंधेरों का सबब बनेगा। तो पता क्या चला कि ऐसे लोग फिर अल्लाह से मग़फ़रत मांग लेते हैं, क्योंकि इंसान ख़ता और निस्यान का मजमू है, इससे जुर्म हो सकता है। फ़ौरन नदामत के एहसास के साथ इंसान झुक जाए, वो गंदे नहीं रहते, वो मैले नहीं होते। बस लोग होते हैं ना कपड़ों पे दाग पड़ गया, वो कहते हैं अब पड़ गया और पड़ने दो, अब गंदे हो गए ना बौर ही गंदे हो जाएं। बस कहते हैं नहीं, पहला धब्बा ही फ़ौरन जाके धो देंगे ताकि गंदगी ना हो। बिल्कुल इंसान के नफ्स का भी यही हाल है कि वो अपने आप को इस तरीके से अपने आप को पाक सुथरा रखता है कि किसी धब्बे को भी अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करता। एक रिवायत का खुलासा है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पुकार लगाएंगे, कहाँ है वो लोग जिनका हक अल्लाह के ज़िम्मे है, मतलब अल्लाह ने उनको कुछ देना है। तो लोग बड़े हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ऐसा भी कोई हो सकता है कि आपने उसका हक देना है, वो कौन लोग हैं कि जिनका हक अल्लाह के ज़िम्मे है। तो कहा जाएगा कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ कर दिया था, अल्लाह के ज़िम्मे उनका हक है, वो आएँ और अपने बदले ले लें। तो ये इतने प्यारे दर्जे हैं जिसके अंदर अल्लाह ताला इंसान को दावत देते हैं कि आओ और तुम अपने आप को पाक साफ़ कर लो। फिर उसके बाद कह दिया वमन यग़फिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और वो अल्लाह के सिवा तो कोई और गुनाहों की माफ़ी दे ही नहीं सकता। एक आखिरी सिफत इन आयात में मुत्तकियों की, वलम यसिर्रू, और नहीं वो इसरार करते। लफ्ज़ यसिर्रू को देख लीजिए, स्वाद रो रो से, उर्दू में बोलते हैं इसरार। इसरार क्या होता है, एक गुनाह को बार बार करना, एक दफ़ा हो गया ख़त्म। फालू वाली बात है तो ठीक है, लेकिन इसरार नहीं होना चाहिए। यानी मुत्तकी से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपने गुनाह को दोहराएगा। एक दफ़ा ये गलती हो गई आपके, अब मैं इसको दोबारा करूँगा, और दोबारा गलती कौन सी होती है, जो प्लानिंग के साथ होती है। हमें तो पहले ही पता होता है कि हम रात जो किया था कल रात फिर यही देखेंगे, और इसकी अगला मामला कब देखेंगे और क्या होगा। यानी इसरार क्या है कि इंसान प्लानिंग के साथ गलतियां करे, जानबूझ के इस तरीके के काम करे कि जिससे लगे कि वाकई इसका ये काम इसकी सोची समझी स्कीम थी। बस आप देखिए कोई चलते चलते गिर गया, क्या गिरने में उसकी कोई कोशिश थी, अचानक गिरा है ना, गिरते ही क्या करेगा, उठ जाएगा। और जो गिरने के बाद उठने की बजाय क्या करे, बार बार गिरे, वो क्या है कि इसने इसरार किया है। तो ईमान वाले से गुनाह हो सकता है, लेकिन वो उस पर बार बार जमता नहीं है। अल्लाह ने ऐसे लोगों की बात करके बता दिया कि देखो जो वो करते हैं उनको पता है कि ये गलत काम है, ऐसे लोग फिर अल्लाह ताला की रहमत से बख्शिश तलब करते हैं, तो अल्लाह ने उनको दे दी कि औलाई का जजा हो मगफ़िरत मे रबी हैं व जन्नात तुन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार। ऐसे लोगों के लिए फिर नेमतों वाली जन्नतें हैं, और ये बहुत ही प्यारा अजर है। व नेम अजरुल आमिलीन, अमल वालों का अजर है, ख्वाहिश वालों का अजर नहीं है ये सिर्फ। क़द खलत मिन कबलिकुम सुनन, खलत का लफ्ज़ खलऊ से था, खा लाम वाऊ से, और सुनन सुन्नत की जमा है, ये जमा मुकसर है, इसलिए बाज़ दफ़ा समझ नहीं आती। लफ्ज़ सुन्नत हम बोलते हैं ना उर्दू में, तरीके को कहते हैं, उसी की जमा सुनन है, नून नून, सुनन से पुराना गलना सड़ना इसका मानी होता है। ओल्ड के मानों में हम सुन्नत रसूल कहते हैं, तो इससे मुराद क्या होता है कि ये पुराना तरीका है, ये कोई नया तरीका नहीं। इसी का ऑपोजिट फिर बिदत होता है, मुहदस कहते हैं उसको, हदस कहते हैं नई चीज़ को। इसी से हदीस का लफ्ज़ है, जो मैं बोलती हूँ तो बात हदीस है ना, नई बात है, हदीस नबी अल्लाह के नबी की हदीस है, वरना हर बात को बात कहते हैं तो हर बात नई बात होती है। तो लिहाजा सुनन जमा है सुन्नत की, और सुन्नत वो रास्ता है जो शाहराहे आम हो, वो तर्ज़ ज़िंदगी जिस रास्ते को इख्तियार किया जाए और उसकी पाबंदी की जाए। अल्लाह सुबहान तआला कैसे लोगों को दावत देता है कि देखो तुमने उहद के मैदान में कितनी तकलीफ़ें सही, बदर के मैदान में तुम्हें फ़तह हुई, पीछे सूदखोरी के नुकसानात अल्लाह ने बता दिए, आखिर में मर्द मोमिन की सिफात का तذکرہ किया, कहा कि अब तुम ज़मीन के इस खुले हुए सफ़े पर अपने से पहली हुई गुजरी हुई कौमों के हालात देखो, फतह और नुसरत उस कौम को मिलेगी जिनके अंदर ये छः खूबियाँ होंगी, और नाकामी और ज़िल्लत उन्हीं के हिस्से में आएगी जो इन खूबियों से महरूम होंगे, और अल्लाह के कानून अटल हैं, कल आज हमेशा एक ही रहेंगे, इसलिए तुम जो कर रहे हो उसका नतीजा वही निकलेगा जो तुमसे पहले वही काम करने वालों का निकला। तो लिहाजा जाओ फसीरु फिल अर्दि फंजुरु कैफ़ काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। और आखिर में एक बात कह दी कि हाजा बयान, ये बयान है, कौन सा बयान, पूरा कुरान और ख़ास तौर पे गज़वे उहद पर यह तबसरा, और उसके तनाजर में मुसलमानों की तरबियत के ये नुक्ते, ये अल्लाह की तरफ से हैं। अब जो समझेगा उसको पता चल जाएगा कि इसी में लोगों के लिए हिदायत का सामान है, वह हुदन हिदायत है, वह मौइज़ा और नसीहत की बातें हैं। वाज़ कहते हैं दिल को नरम करने वाली बात को, किसका दिल नरम होगा, लिल मुत्तकीन तकवा वालों को। पीछे भी देखिए सिफात तकवा वालों की थी, यहाँ फिर तकवा वालों की बात कर दी, बता दिया कि देखो फ़ायदा उसको ही होगा जिसका दिल नरम होगा। और कई ऐसे होंगे वो कहेंगे ठीक है, नथिंग इज़ न्यू, कुछ भी नहीं है, सबको पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस अमल करते जाओ, जो समझ आता है करते जाओ। तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ताला लोगों को दावत देता है कि अपने आप को फ़तह करो। देखिए दुश्मनों पर फ़तह पाने की बातें हो रही है ना इस जंग में, तो दुश्मनों पर फतह पाने से पहले इंसान को ख़ुद पर फतह पाने की ज़रूरत है। पीछे मैंने इशारा किया था, अब मैं थोड़ी सी इसको पॉइंट्स की सूरत में आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि इंसान की तबीयत में बुखल है, कंजूसी है, तो पहली फतह जो मैंने और आपने अपने ऊपर पानी है ना, वो अपनी कंजूसी का इलाज करना है। कंजूसी को आप कह लें स्टिंजीनेस, बुखल है, माल देने को दिल नहीं चाहता, वक्त देने को दिल नहीं चाहता, इसका इलाज युनफिकून फिस सर्राय वद्दर्रा में बता दिया कि तुम अपनी चीज़ों को समेट समेट के ना रखो, अल्लाह के रास्ते में लगाओगे तो तुम्हारा दिल खुलेगा। तुम अपनी जिस नेमत को बचाना चाहते हो ना, उसको अल्लाह के रास्ते में लगा दो। फिर आप देखिए कि इंसान के मिजाज के अंदर तलखी होती है, मिजाज जिसको आप कहते हैं ना, इनका मिजाज गर्म है, इसको भी आप एक किस्म का नफ्स ही कह सकते हैं, तो इसका इलाज काज़िमीन अलगैस में बताया गया कि गुस्से पे काबू पा लो। तुम अपने गुस्से पे काबू पा लो, दुनिया पे खुद ही काबू पालोगे, और वो बंदा जो दुनिया में अल्लाह का खलीफा बन के रहता है और अल्लाह का नुमाइंदा बन के रहता है, अल्लाह के दीन का, वो ठंडे मिजाज का होगा, तभी दूसरों से काम करवाएगा। जो खुद ही आग बगोला हो जाए हर बात में, वो दूसरों को कहाँ जितवाएगा। बस आप तबलीग करने गए, आ गया आपको गुस्सा, आप तो लोगों के माइक तोड़ ताड़ के आ जाएंगे, आप इतने ज़ोर से हाथ मारेंगे टेबल पे कि पीछे जो बच्चे बैठे हैं वो भी रोने लग जाएंगे, आएंगे वो लोग अगली दफ़ा। जितना दाइये दीन को ठंडे सुभा का, ठंडे मिजाज का और गुस्से पे काबू पाने वाला होना चाहिए, उतना किसी और को नहीं होता। कई दफ़ा आप लोग सफ़े अभी भी पलटते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं अभी नए हैं, कोई बात नहीं, इनको नहीं पता चलता, टोक टोक के रैक रोक रोक के बात की समझ आती है ना। तो अब अगर पहले दिन आके गुस्सा कर दिया जाए, मुश्किल है। इंसान का काम क्या है कि वो अपने आप को काबू पाए। फिर आप देखिए कि एक और चीज़ है इंसान के मिजाज में, और वो कहे कि गुनाह की तरफ मिलान है, इंसान नेचुरली गुनाह करना चाहता है, इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू में पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसको, तो इसका अल्लाह ताला ने काम क्या बताया कि तुम फाहिशा और जुल्म की चीज़ों से अपने आप को दूर रखो, फुखश चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में ना हो। फिर इंसान के नफ्स के अंदर अना है, ईगो, इगोइस्टिक है इंसान, उसका इलाज क्या है? आफ़ीना अन नास, लोगों को माफ़ कर दो, क्योंकि जब इंसान दूसरों को अपने से छोटा समझता है तभी उन पर अकड़ता है। जब इंसान अपने आप को छोटा समझेगा तो खामखा ऐसी चीज़ें दिल में आएंगी भी नहीं। फिर इसी तरह आप देखिए कि इंसान के अंदर ख्वाहिश है, हमारे नफ्स के अंदर बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, तो इसके ऊपर काबू पाने के लिए रुजू इल्लाह बताया गया कि अपनी ख्वाहिशात पर फतह पाओ। फिर इसके बाद इंसान अपने तकब्बुर पर फतह पाए, ये सब कुछ कर करा के जब एक बंदा बनेगा तो वो कौन सा बंदा होगा जो अल्लाह का मतलूब बंदा है। ये है वो बयान जो इंसानियत के लिए दूरस इनकलाब की दावत देता है। जिन लोगों में ये सिफात थी उन्होंने दुनिया के रास्ते बदल दिए, लोग उनसे डरते थे। अल्लाह के नबी सल्लम का दुश्मन आपसे 1 मील के फासले पे होता था तो उसको आपसे खौफ आता था, यानी उसके दिल पे रोब आता था। आज उम्मत का रोब क्यों चला गया? क्योंकि उम्मत इन सिफात से आरी हो गई। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तू हमारे हाल पे रहम फरमा और हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमा। यहाँ पे सबक पूरा हुआ। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين